Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Mandakopanishad, presented by Swami Sri Akhandanandagiriji Maharaj. Thank you. Om Namah Shivaya.
Om Tat Sat. Tav Tattvam Na Janami. कीदृशोऽसि महेश्वरः यादृशोऽसि महादेव तादृशाय नमो नमः यो असौ स्वहं यजामि ॐ शान्ति ॐ मुंडक उपनिषद अथर्ववेद देव उपनिषद है। अथर्ववेद से संबंधित बहुत सी उपनिषदें हैं, किंतु उनमें से केवल तीन उपनिषद ऐसी हैं, प्रश्नोपनिषद, मुंडक और मांडुक्य, जिन पर आचार्यों ने अपने अपने भाष्य, अपने अपने विचार अभिव्यक्त किए। इन सब में भी मुंडक उपनिषद अत्यधिक विख्यात है और ब्रह्म विद्या तक पहुंचने के लिए यदि इस उपनिषद का सहारा लेकर अनुचिंतन किया जाए तो इसमें सुगमता है, स्पष्टता है और सरलता है। इस उपनिषद में कुल तीन मुंडक हैं, तीन चैप्टर समझ लो, तीन अध्याय। हर अध्याय के दो भाग हैं, इस तरह से कुल इसमें छह भाग समझ लो, और 63 मंत्र हैं, 63 इसमें कुल ऋचाएं हैं, और इन मंत्रों में से अधिकांश मंत्र अन्य उपनिषदों में भी उपलब्ध हैं। ईशावास्य उपनिषद और मुंडक उपनिषद का बहुत अधिक भाग श्रीमद् भगवत गीता में है। भगवत गीता के जितने सिद्धांत हैं वो इस उपनिषद पर आधारित हैं। इस उपनिषद में ब्रह्म विद्या की स्तुति की गई है, प्रशंसा है कि ब्रह्म विद्या सर्व विद्याम प्रतिष्ठ, सब विद्याओं का आधार है, और ब्रह्मा जी से ये विद्या, उनकी संतान अथर्वा में आई और अथर्वा से फिर ये परंपरागत चलते चलते शौनक ऋषि तक पहुंची अंगिरस के माध्यम से। इस उपनिषद का आरंभ होता है शौनक की इस जिज्ञासा से कि वो क्या है जिसको जान लेने के बाद फिर और कुछ जानना बाकी नहीं रहता, आप मुझे वो बतलाएं जिस एक को जानकर सारा कुछ ही जाना हुआ हो जाता है। उसके उत्तर में ऋषि कहते हैं कि दो तरह की विद्याएं हैं, परा और अपरा। फिर संक्षेप में उन्होंने इन दोनों का उल्लेख किया और ये बतलाया कि अपरा का संबंध विज्ञान से है और परा का संबंध ज्ञान से, अर्थात एक से बहुत हो जाने की विद्या, एक तत्व को लेकर उसको अनेकता में बांट देना, ये अपरा विद्या, और अनेकता में एकता को देख लेना, ये परा विद्या। ऐसा बतलाकर उन्होंने प्रारंभ में ही संपूर्ण ब्रह्म विद्या का सार बतला दिया। हम प्रथम मुंडक के प्रथम अध्याय के छठे मंत्र को लेकर कुछ विचार कर रहे थे, जिसमें ऋषि ने यह बात कही कि यत्तत् अदृश्यम् अग्राह्यम अगोत्रम अवरणम अचक्षुश्रोत्रम तत्पाणिपादम नित्यम विभुम सर्वगतम सुसूक्ष्म अव्ययम यत् भूत योनि परिपश्यन्ति धीरा। इस श्रुति में वस्तुतः संपूर्ण ज्ञेय का निरूपण है, जिसको भी ब्रह्म का पूरी तरह से निरूपण है। इसमें इसके बाद आने वाली जितनी भी श्रुतियां हैं, फिर उसमें उन्होंने अपरा विद्या का उल्लेख किया। इसके बाद उन्होंने बतलाया है कि किस तरह से उस एक तत्व से इस सृष्टि की उत्पत्ति हुई, उसमें उन्होंने उस परम तत्व से अव्याकृत, अव्याकृत से हिरण्यगर्भ, हिरण्यगर्भ से प्राण, फिर ये सृष्टि, फिर औषधियां, फिर कर्म की उत्पत्ति हुई, ऐसा इसमें अगली श्रुतियों में कहा गया। और फिर कर्म की परंपरा का उल्लेख हुआ। कर्म का भी बहुत संक्षेप में है, लेकिन बहुत सटीक विस्तार है इसमें। सकाम कर्मों का, निष्काम कर्मों का, हवन का, यज्ञ का, यज्ञ में जो अग्नि है उसका, अग्नि की जिह्वाओं का, सप्त जिह्वा, सात जिह्वाओं का उल्लेख है, एक एक का नाम लेके कि जब हम हवन करते हैं, अग्नि प्रज्वलित होती है, तो उसकी ये जिह्वाएं हैं। फिर अग्नि का भी वो धूमायत है, धुएं से ढकी हुई है, दीप्त है, प्रदीप्त है, ज्वलित है, प्रज्वलित है, उद्दीप्त है, ऐसे करके अग्नि का भी पूरी तरह से विस्तार से बहुत ठीक ढंग से समझाया गया कि जिसकी रुचि गृहस्थ में रहते हुए वर्ण आश्रम धर्म का पालन करने में हो, वो भी ठीक ढंग से उसको समझ सके। फिर उसमें आहुति देने की बात भी बतलाई गई कि आहुति कहां पर अग्नि के किस हवन कुंड के किस भाग में दें, दक्षिण में अग्नि के लिए स्वाहा, उत्तर में सोम के लिए, बाकी आहुतियां मध्य भाग में, और उनके नाम हैं। हवन कुंड में प्रज्वलित अग्नि, दक्षिण भाग वाली अग्नि का नाम है, उत्तर भाग में जो अग्नि जल रही है उसका नाम है, मध्य वाली का नाम है, हवन कुंड में ही एक ही अग्नि जो प्रज्वलित हो रही है, एक ही अग्नि में विभिन्न अग्नियों की कल्पना की गई कि इस ओर आहुति देंगे तो ऐसा होगा, इस ओर देंगे तो ऐसा होगा। सकाम कर्मों के लिए आहुति ऐसी जगह पर दें, निष्काम कर्म के लिए ऐसी दें, इस तरह से उसका विस्तार से वर्णन है। और फिर उन आहुतियों में किन मंत्रों का प्रयोग है इसका इशारा किया गया। आहुतियां भी बिना मंत्रों के नहीं है, मंत्रों का उच्चारण और उसमें केवल मंत्रों के उच्चारण की ही बात है, मंत्रों के अर्थों की कोई जरूरत नहीं कि उसके क्या अर्थ है, उसके लिए कोई जरूरत नहीं, ऐसा उसमें बतलाया गया। फिर कर्म से हमें क्या क्या प्राप्त होता है ये सब बातें बतलाई गई। कर्म से प्राप्त होने वाली सभी वस्तुओं का, धन दौलत पृथ्वी संतान यश, इस धरती पर रहते हुए इस पृथ्वी पर रहते हुए सभी चीजें जो एक मनुष्य की कामना हो सकती है कि मैं सुस्वस्थ रहूं, मेरे पास भोग हो, मेरे पास ये बातें हों, उन सब का उल्लेख किया गया। और फिर मरने के बाद भी स्वर्ग की प्राप्ति की बात के बाद में भी, इस लोक में तो हम सुखी रहेंगे ही लेकिन बाद में भी फिर स्वर्ग आदि की प्राप्ति होगी। स्वर्ग में भी जितने हमने शुभ कर्म किए हुए हैं उतनी देर तक स्वर्ग का भोग हमें मिलेगा। और छोटे छोटे शब्दों में, एक ही शब्द में वहां यह भी बतला दिया गया कि स्वर्ग में भी अच्छे देर तक किसने रहना है, थोड़ी देर तक किसने रहना है। स्वर्ग में भी इंद्र की अपनी जगह है, वरुण की अपनी जगह है, बृहस्पति की अपनी जगह है और बाकी देवताओं की अपनी। स्वर्ग में भी सब एक समान नहीं है, उसमें भी बड़ा छोटा नीचा ऊपर इस तरह की सब बातें हैं। यहां उन्होंने ये जो बात बतलाई है कि अग्नि में भी एक ही हवन कुंड की अग्नि के जो लपट निकल रही है उसकी सात जिह्वाओं में नाम गिनवाए सात, उसमें बात यही ध्यान देने की है कि एक ही तत्व में एक अग्नि एक ही है, उसमें नाम कल्पित हैं, एक ही तत्व में विभिन्न नाम आरोपित किए गए, क्योंकि अंत में उन्होंने एक ही वो तत्व समझाना है जिसमें ये सारे, जिसमें अग्नि भी है, जल भी है, पृथ्वी भी है, आकाश भी है, वायु भी है, हम भी है, ये सब उस परम तत्व में कल्पित हैं। इसलिए उन्होंने भौतिक उदाहरणों में भी विभिन्नता, एक ही चीज में विभिन्नता, देखो सूत तो एक ही है लेकिन उसी से बनने वाले कपड़े को, उसी को हम किसी को दरी कह लेते हैं, किसी को चद्दर कहेंगे, किसी को सराहना कहेंगे, कपड़ा एक ही होगा। तो वो सब इसको शास्त्र की भाषा में कहेंगे सूत में सब कल्पित है तो सूत ही धागा है लेकिन उसी के नाम है कि ये कुर्ता है, ये पजामा है, ये बनियान है, ये वो है, ये इस तरह के जो नाम हैं, अगर ध्यान एक पर रहे तत्व पर तो फिर हम उस परम तत्व तक पहुंचने में हमें सुविधा होगी। इसलिए उन्होंने बहुत विस्तार से लेकिन शब्दों में बहुत संक्षेप में, उपनिषदों के शब्द आप समझ लें कि टेलीग्राफिक भाषा में होते हैं, जैसे टेलीग्राम देना हो ना किसी को तो उसमें कम से कम शब्दों का प्रयोग करते, कम से कम शब्द लेकिन अधिक से अधिक अर्थ, अर्थ उसके अधिक से अधिक होंगे, अधिक से अधिक कितने अधिक कि एक ही शब्द को लेकर अगर आप सारी उम्र भी उसका अनुचिंतन करें तो फिर भी वो उसके अर्थों को हम पूरी तरह से ये नहीं कह सकते कि अब ये अर्थ के पूरे अर्थ मेरे से आ गए बुद्धि में, चाहे वो ब्रह्म शब्द हो, चाहे वो नित्य शब्द हो, चाहे वो विभू हो, चाहे वो सर्वगत हो, सर्वविद हो, सर्ववित्त हो, इनमें से कोई भी एक शब्द ले, कोई भी एक, वो जन्म जन्मांतर के लिए काफी है। उसी का ये अनुचिंतन, उसका विस्तार करते चले जाएंगे तो वो कभी, क्योंकि ये अनंत का नाम है, अनंत कहते हैं जिसका अंत ही नहीं, तो उसके शब्द के अर्थों का भी अंत कहां होगा, क्योंकि जिसकी हम बात कर रहे हैं जब उसका ही अंत नहीं है, वो परिच्छिन्न नहीं है, वो सीमित नहीं है, वो थोड़ी सी जगह में नहीं है, तो क्योंकि जिसका वो शब्द वाचक है वो अपने आप में असीम है, अनंत है, इसलिए उसके अर्थ भी अनंत हैं। इसीलिए बहुत सीधे सीधे शब्दों में भी ये कह दिया गया, हरि अनंत हरि कथा अनंता, वो अनंत का मतलब है अंत नहीं होगा, कहते चले जाओ कहते चले जाओ, वो खत्म कभी नहीं होगा। क्षमा भी जल के बुझ गई, चांद निकल के छिप गया, हुस्ने अजल की दास्तां किस्सा है ना तमाम है। ना तमाम का मतलब होता है जो कभी खत्म ना होने वाला किस्सा हो। हुस्ने अजल की दास्तां, ये जो दुनिया का सबसे सुंदर से सुंदरतम सौंदर्य है उसकी कहानी कभी खत्म होने वाली नहीं। कितनी सदियां बीत गई, लोग रात रात भर बैठे रहे उसकी चर्चा करते हुए, कई रातें चली गईं, कई ऋतुएं चली गईं, कई मौसम बदल गए, लेकिन आज तक उस हुसैन के हुसन का पूरी तरह से वर्णन नहीं हो पाया। क्यों? क्योंकि वो किस्सा ना तमाम है, कभी ना खत्म होने वाला किस्सा है, अनएंडिंग एंड। वो ऐसा है कि जहां भी किसी ने खत्म किया, को जहां पर भी कोई भी, आप भी देखो कितने वर्षों से हमारा ये आश्रम है और इस आश्रम में कितने वर्षों में कितने लोग आए और उस कहानी को कहते चले गए, जहां जहां पर से, इसलिए कभी खत्म नहीं होती ये कहानी, कभी भी खत्म नहीं होती, ये चलती ही रहती। इसलिए कोई एक शब्द भी अगर हम पकड़ लेंगे तो वो हमें वहीं तक ले जाएगा, और वो शब्द पराविद्या से संबंधित हो या अपराध, क्योंकि दोनों अंततः उसमें कल्पित। तो ये जो मैं आपको इस उपनिषद की सार बतला रहा हूं सभी श्लोकों की, के आगे इसमें क्या क्या था, तो कर्मों का पूरी तरह से विस्तार है और किस कर्म से क्या प्राप्त होगा, कर्मानुसार जन्म कैसे है, ये सब बातें ठीक से समझाएंगे। और फिर इस कर्म फल का, कर्मों की महिमा का, कर्मों के महत्व का उपसंहार करते हुए ऋषि वहां कहते हैं कि विद्वान को कर्म और कर्म फल पर पूर्ण रूपेण विचार करने के बाद संसार से उपराम हो जाना चाहिए। प्रेक्षय लोकान कर्म चित्तान, ऐसा एक श्रुति आई इसमें कि सारे कर्मों का, कि कर्म हम करेंगे, कितना भी अच्छा से अच्छा कर्म करो, कितना भी आप पूरी तरह से सावधानी से कर्म करो, लेकिन उसमें फिर भी कोई ना कोई त्रुटि रह ही जाएगी, क्योंकि कर्म का क्षेत्र ही ऐसा है कि हम कितनी भी सावधानी से काम करें, कितना भी हम सोच लें कि इसमें कोई त्रुटि नहीं रहेगी। कदम इंसान का राह दहर में थर्रा ही जाता है, चले कोई बच के कितना फिर भी ठोक कर खा ही जाता है, कहीं ना कहीं कोई त्रुटि रह ही जाती, कुछ स्वार्थवश, कुछ प्रमादवश और कुछ प्रकृतिवश, कितना भी कर लो कोई ना कोई कमी रह जाएगी। तो जब कोई ना कोई कमी रह जाएगी तो इसका अर्थ होता है कि प्रत्येक कर्म शुभ और अशुभ उसमें छुपा ही रहता है। ये बात अलग है कि शुभ अधिक हो और अशुभ कम आए, तो इसलिए अगर बहुत दोनों क्योंकि छुपे रहते हैं इसलिए हर कर्म का फल भी वैसा ही होता है, उसमें कुछ सुख भी मिलता है और हर सुख में कुछ ना कुछ छुपा हुआ दुख भी होता है। स्वर्ग भी मिल जाता है लेकिन स्वर्ग एक दिन छूट भी जाना है, स्वर्ग में भी रहते हुए ईर्ष्या द्वेष से ऊपर नहीं उठ पाते क्योंकि स्वर्ग में भी कोई अधिक वाला है। जैसे उदाहरण देते हैं आधुनिक युग का के होटल के कमरों में ठहरे हुए हैं तो उस होटल में वो भी कमरा है जो 5,000 रुपये पर नाइट का है और वो भी कमरा है जो 1,200 रुपये पर नाइट का। अब जिसके पास जितनी क्षमता है जिसके पास जितने पैसे हैं उस अनुसार वो अपना ले लेगा, ऐसे ही स्वर्ग की बात बदला है। और फिर कर्म फल के क्षीण हो जाने पर जब वो भोग पूरा हुआ तो फिर वापस आना पड़ेगा, वापस आके फिर इसी संसार में आए और फिर हम कर्म जब तक करते रहेंगे जन्म मरण के चक्र से बच नहीं सकते। हम उस तत्व तक नहीं पहुंच सकते जिसको जानने की प्रतिज्ञा लेकर इसका जो साधक है शौनक ऋषि वो आते हैं, क्योंकि उनका ये कहना है कि हमें कुछ ऐसा पता लग जाए कि इन सब चक्रों से छूट जाए अर्थात हमेशा आनंद की स्थिति में रहें, फिर कहीं आना जाना ना हो, जीवन में उतार चढ़ाव ना आए। अंत में उन्होंने कर्मों का इसलिए उल्लेख किया कि ऐसा करते करते हम कर्मों की वास्तविकता से परिचित हो जाए, हमें ये ज्ञान हो जाए कि अंत में इनसे कुछ मिलेगा नहीं। फिर ब्रह्म विद्या की ओर आए, फिर उन्होंने लिखा कि तब इसको जानने के लिए गुरु में विगच्छे, तो फिर गुरु की तरफ आओ और गुरु के पास कैसे आओ वो भी उन्होंने इसमें समित पानी हाथ में समिधा लेकर गुरु के पास पहुंचो। समिधा के कई अर्थ बनाए गए, समिधा का मतलब सूखी लकड़ी, हवन के लिए करने वाली लकड़ी। तो ये प्रतीक रूप में ये बातें बतलाई गई कि खाली हाथ जाना नहीं चाहिए लेकिन जाना भी चाहिए तो सूखी लकड़ी की तरह जो जलने के लिए तैयार, अब कोई वासनाएं मन में ना हो, ऐसा ना हो कि वहां जाके भी सुलगते रहे। अगर लकड़ी गीली होगी तो हम अग्नि में डालने पर भी वो सुलगती रहेगी, जलेगी नहीं, ना पूरी तरह से जलेगी और ना पूरी तरह से ये भी नहीं है कि ना जले। तो इसलिए कई लोग वासनाएं रहते हुए कई बार कई आश्रमों में आ जाते हैं कि अब हम भक्ति करेंगे वो करेंगे, लेकिन वहां रहते रहते भी हर रोज बातें उनको घर की, पीछे रोज टेलीफोन करना कि आज ये हो गया है आज वो हो गया है, ऐसा वो गीली लकड़ी की तरह सुलग रहे हैं, ना जलने लायक ना उधर। तो इस तरह से नहीं जाना चाहिए, ऐसा उन्होंने इशारों से ये बात कही। गुरु के पास जाकर फिर वो ये प्रश्न करे और तब उसमें पात्रता आ जाए, पात्रता आने पर फिर गुरु उसको उसका उपदेश करेगा। फिर यही जो पहली इसकी छठे प्रथम मुंडक के प्रथम अध्याय का जो छठा मंत्र है जिसको हम यत्तत् अदृश्यम अग्राह्यम अगोचरम आवरणम ऐसा करके पढ़ा, जिसको इसी के ही से मिलते जुलते शब्दों में फिर आगे की श्रुतियों में उपदेश है ब्रह्म का कि जब कोई साधक ऐसे पहुंचेगा फिर उसको इस तरह से उपदेश होगा। पूरे इस उपदेश के बाद समझाने के बाद फिर अंतम श्लोकों में अंतम श्रुतियों में अधिकारी का निरूपण किया गया, दोबारा फिर ये बतलाया गया कि कौन है जो इसका अधिकारी। वेदांत में अधिकारी का अर्थ होता है फल किसको प्राप्त होगा, यहां अधिकारी का ये अर्थ नहीं है कि सुनने का कौन। देखो सुनने के तो सभी अधिकारी, कोई भी सुने, बच्चा बूढ़ा स्त्री पुरुष और गृहस्थ बान प्रस्थ न्यासी कोई भी सुने, सुनने में किसी को कोई मनाही नहीं है। सुनने में तो माइक लगा हुआ है, लाउड स्पीकर है, बाहर भी आवाज जा रही होगी, कोई भी बैठा सुन सकता है, लेकिन उसका फल नहीं मिलेगा उसे सुनने का, चाहे कोई कितना भी सुने। तो जब वेदांत में अधिकारी शब्द का प्रयोग होता है कि इसका अधिकारी कौन, अधिकारी का अर्थ होता है कि इसको सुनने का लाभ किसे होगा, किसके जीवन में ये उतरेगा। यहां पर अधिकारी का मतलब एक होता है, देखो आपने कोई परीक्षा देनी है, आईएएस की परीक्षा देने का कौन अधिकारी, वो कहेगा जिसने भी बीए पास कर लिया वो उसका अधिकारी, अब चाहे वो थर्ड डिवीजन में पास हुआ हो या फर्स्ट में, इसमें कोई बात नहीं, ग्रेजुएट हो तो वो आईएएस की परीक्षा देगा, एक इसको अधिकार कहते। वेदांत में जब अधिकारी शब्द का प्रयोग होता है कि अधिकारी कौन, इस पर विचार ये करना होता है कि अगर ये सुनने से ही सब कुछ हो जाता तो फिर अपने पर हम विचार करते हैं कि हमने तो सुना, बहुत बार सुना, ये कोई नई बात नहीं है कि जो अब हम सुन रहे हैं। तत्त्वमसि अहम् ब्रह्मोऽस्मि प्रज्ञानम् ब्रह्म सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, इसको कितनी बार सुना, बहुत बार सुना, लेकिन आज तक कोई इसका ना अनुभूति हुई ना कोई जीवन में लाभ हुआ। जब तो क्यों लाभ नहीं हुआ, क्योंकि अधिकारी नहीं, यहां पर अधिकार की बात आएगी, अगर अधिकारी होते तो अब तक हो जाना था जो कुछ होना था। तो अधिकारी का यहां पर फिर आखिरी इन श्रुतियों में दो में इसी उपनिषद में अधिकारी का वर्णन किया गया कि अधिकारी कौन है, फिर उसी में इसी बात को दोहराया गया है जो शुरू की बात आई कि पहले पूरी तरह से वो अपरा विद्या का जानकार, जब तक अपरा को नहीं जानेगा परा तक नहीं पहुंचेगा। ये जो अपरा और परा की बातें कही, अपरा को छोड़ने के लिए नहीं है, इसका अर्थ ये नहीं है कि वेदों की निस्सारता, वेदों को ठीक से जाने और वेदों को जानकर उसके रहस्य को, उसके कर्मकांड के भाग को भी जाने, मंत्र भाग उपासना भाग को भी जाने और उसके अनुसार उपासना भी करे और हवन आदि भी, यज्ञ आदि भी करे, ये इसका अभिप्राय है। जिसने जीवन में उपासना नहीं की, जिसने जीवन में अपने वर्णानुसार हवन यज्ञ उपवास जो भी व्रत नियम है धर्म के उनका पालन नहीं किया, वो कभी भी ब्रह्म विद्या में प्रवेश नहीं कर पाएगा। इसलिए ये जो अपरा विद्या वो विद्या इनका उल्लेख उन्होंने किया, वो इसलिए नहीं है कि उनको वो उनका कोई संबंध नहीं है या वो कोई निरर्थक भाग है हमारे साहित्य का, वो सिर्फ इसलिए है कि उनको आप करें, उनको पढ़ें, उनको सुने, उसके अनुसार अपने जीवन को चलाएं, और वो इसलिए हैं कि उनको एक दिन छोड़ना है, हमेशा उसी में बैठे रहने के लिए नहीं, वो रास्ता है, मंजिल तक जाने के लिए वहां से गुजरना ही होगा, ऐसा नहीं है कि हम कहीं जाना चाहें और वहां से ना गुजरे। वेदांत के संबंध में जैसा आम भ्रांतियां या आम लोगों ने कि कहीं जाने की जरूरत नहीं, कुछ करने की जरूरत नहीं, ब्रह्म का कर्म से कोई संबंध नहीं, ऐसा नहीं है, ये ठीक है। कई समझाने वाले ये समझाते हैं कि महात्मा बुद्ध का उदाहरण लेंगे, महावीर वर्धमान का उदाहरण लेंगे या और संतों का उदाहरण लेंगे, वो बतलाते हैं कि महात्मा बुद्ध उन्होंने इतने वर्ष तक तपस्या की,